ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಸಹನನೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಗುಣಸ್ಥಾನೋ ಮೇ ಮರಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಜೀವ, ಕಿಸ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಮೇ ಮರಣ ಕರ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯವ್ರತ ಯಾ ಭಾವವ್ರತ, ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ ವ್ರತ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಸೆ ದೇವಗತಿ ಮೇ ಕೋನ್ ಕೋನ್ ಸೆ ಸ್ಥಾನ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಯಹ ವಿಷಯ ಹೋ ಚುಕಾ ಥಾ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇ ಇಸ್ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಭಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಕುಛ ಪ್ರಶ್ನ ಹಮ ಪೂಛೆಂಗೆ, ಕುಛ ಉತ್ತರ ಆಪ್ ದೇಂಗೆ. ಚೌಥಾ ಸಹನ ವಾಲ ಜೀವ ಧ್ಯಾನ ಸೆ ಸುನೆಂಗೆ. ಚೌಥಾ ಸಹನ ವಾಲ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯ ವ್ರತೋ ಕೋ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಭಾವ ವ್ರತೋ ಕೋ ಗ್ರಹಣ ನೈ ಕರ್ತಾ. ಔರ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಉಸ್ಕಾ ಪಹಲಾ ಹೈ. ತೋ ದೇವಗತಿ ಮೇ ಕಹಾಂ ಸೆ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಭಾವನಾತ್ರಿಕ ಸೆ ಸೋಲ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಸೋಲ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೈಸೆ ಜಾಯೇಗಾ? ಗುಣಸ್ಥಾನ ಪಹಲಾ ಹೈ, ಸಹನನ್ ಚೌಥಾ ಹೈ, ಕಿಂತು ಗುಣಸ್ಥಾನ ಪಹಲಾ ಹೈ, ಗುಣಸ್ಥಾನ ಪಹಲೆ ಮೇ ಮರಣ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ತೋ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? ಬಾರ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಕಾರಣ ಹೈ ಕಿ ಬಾರ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್ ಗಯಾ? ಭವನತ್ರಿಕ್ ಸೆ ಸೋಲ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್ ವಹ ಜಾತಾ ಹೈ ಜೋ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋ. ಇಸ್ಲಿ ಹಮ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛ ರಹೆ ಹೈ, ಆಪ್ ಸೋಲ್ವ ಬತಾಯೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಿ ತೋ ಪೂಛ ರಹೆ ಹಮ್. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಕೆ ಸಾಥ್ ದ್ರವ್ಯ ವ್ರತೋ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೋ ತೋ ಸೋಲ್, ಮಿಥ್ಯಾ ದರ್ಶನ ಕೆ ಸಾಥ್ ದ್ರವ್ಯ ವ್ರತ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೋ ತೋ ಬಾರ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್. ಕೋನ್ ಅನುವೃತಿ ಅಬ್ ಬತಾನಾ? ಮಹಾವೃತಿ ದಿಗಂಬರ್ ಮುನಿ ದ್ರವ್ಯ ವ್ರತೋ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ ರಹೆ, ಉನ್ಕಾ ಭಿ ಸೋಹನನ್ ಚೌಥಾ ಹೈ, ಮರಣ ಪಹಲೆ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ದ್ರವ್ಯ ವ್ರತೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಚೌಥೆ ಗುಣ ಸೋಹನನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮರಣ ಕಹಾಂ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ? ಯೇ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಬೋಲೋ. ಸೋನನ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ? ಚೌಥಾ. ಸೋನನ್ ಕೋ ಭಿ ಧ್ಯಾನ ಮೇ ರಖನಾ, ಗುಣಸ್ಥಾನ ಕೋ ಭಿ ಧ್ಯಾನ ಮೇ ರಖನಾ, ಫಿರ್ ಉತ್ತರ ದೇನಾ. ಸೋನನ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ ದೇಖ ಕರ್ಕೆ ಬತಾಓಗೆ? ಉಸ್ ಢೂಂಢನೆ ಸೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಜನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಜನ್ ಹೋಗಾ. ಕೇವಲ ಸುನ್ನಾ ಹೈ ಔರ್ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ, ಸೋಲ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಸನನ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ? ಚೌಥಾ. ವ್ರತ ಕೌನ್ ಸೆ ಹೈ? ದ್ರವ್ಯ ವ್ರತ, ಭಾವ ವ್ರತ ನಹೀ ಹೈ. ಗುಣಸ್ಥಾನ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ? ಪಹಲಾ. ಕಹಾಂ ತಕ್ ಜಾಯೆಂಗೆ? ಸೋಲ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್. ಅಗರ್ ಯಹಿ ಮುನಿ ಸೇಮ್ ಅಗರ್ ಚೌಥೆ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಮೇ ಮರಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಜಾಯೆಂಗೆ? पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक, और वो कहाँ से कहाँ तक गए थे? भवनत्रिक से 16वें स्वर्ग तक। मुनि तो पहले गुणस्थान में भी मरण करे तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते, किंतु वस्त्रधारी द्रव्यव्रती पहले गुणस्थान में मरण करे और चौथा सहनन हो 12वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। यदि चौथे गुणस्थान में मरण करेंगे तो वे 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। व्रत कौन से हैं? द्रव्य व्रत, अनुव्रत या महाव्रत? अनुव्रत। हाँ नहीं, 12वीं तक ही जाएगा, चाहे व्रत लेने के बाद आ जाएं, चाहे व्रत लेने से पहले आ जाएं। पहले में आता है और मरण करता है तो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता। अनुव्रति 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता जो पहले में मरण कर रहा है, चौथे में मरण करता है तो जा सकता है 16वें तक। स्त्री हो या पुरुष हो, 16वें तक जा सकते हैं। सहनन चौथा हो तो 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। कर्मभूमि में यदि स्त्री को प्रथम सहनन प्राप्त हो जाए, नहीं होता है ना। भोग भूमि में यदि स्त्री को प्रथम सहनन प्राप्त हो जाए तो वह सम्यक दृष्टि हो तो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? भोग भूमि की स्त्री पहले से दूसरे स्वर्ग तक, यदि प्रथम गुणस्थान में मरण हो, वज्रषभ नारासनन है, विचार करना है। पहले सहनन के साथ प्रथम गुणस्थान में मरण हो स्त्री को, तो कहां तक जा सकते? भोग भूमि की स्त्री भवनत्रिक में ही जाती। हाँ, भोग भूमि के जीव भवनत्रिक से नहीं लगा सकते, उनकी स्पेशल व्यवस्था है। मिथ्यात्व के साथ मरण करेंगे भवनत्रिक में, सम्यक्त्व के साथ मरण करेंगे पहले या दूसरे में। कर्म भूमि की तरह भवनत्रिक से लेकर दूसरे स्वर्ग तक ऐसा घटित नहीं करना है। सहनन के साथ स्वर्ग में कहां तक उत्पन्न हो सकते हैं ये तो सबको याद है ना, नहीं है? भूल जाता है क्या? देखो, पहले सहनन से कहां तक जाते हैं, कॉमन कथन, विशेष कथन नहीं, सर्वार्थ सिद्धि तक। ये कॉमन कथन तो ध्यान में रखा करो, कॉमन कथन। पहले स्वर्ग भवनत्रिक से लेकर 16वें स्वर्ग तक, ठीक है, दूसरे से भवनत्रिक से नवानुदिश तक। हाँ, ये मोटे मोटे रूप से पहले ध्यान रखना चाहिए, नवानुदिश तक, बरोबर है। तीसरे सनन से नवग्रवीक तक, चौथे सनन से 16वें स्वर्ग तक, पांचवें से 12वें स्वर्ग तक, छठे से, ऐसा याद रखो। पहले इतना याद रखो, कॉमन कथन पहले याद रखना चाहिए, विशेष कथन ऑटोमेटिक बैठ जाता है, सामान्य कथन याद हो गया। पहले से सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष, सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष, दूसरे से नव अनुदिश, तीसरे से नव ग्रवेक, चौथे से सोलहवें स्वर्ग तक, पांचवें से बारहवें स्वर्ग तक, छठे से आठवें स्वर्ग तक। कहाँ से लेना इसको? भवनत्रिक से। यदि मिथ्यात्वी है तो भवनत्रिक से, सम्यक दृष्टि है तो पहले स्वर्ग से लेना चाहिए। इतना कॉमन कथन है, इतना ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कर्म भूमि अलग है, भोग भूमि अलग है। भोग भूमि में भी सहनन होते हैं और कर्म भूमि में भी सवनन होते हैं। कर्म भूमि में कितने सवनन होते हैं जीवों को? छह सवनन। पुरुष पर्याय में कितने सवनन? छह सवनन। स्त्री पर्याय में कितने सवनन होते हैं? तीन। कौन कौन से? चौथा, पांचवा और छठा। ये कॉमन कथन है, इसको ध्यान में रखते जाओ। भोग भूमि में कितने सवनन होते हैं? एक ही सवनन होता है, स्त्री को भी, पुरुष को भी, त्रिरंच को भी, त्रिरंचनी को भी, सभी सभी में, सभी में कुभोग भूमि। हाँ हाँ, सबको वज्रशिव नारद सनन, सबको एक ही सनन है। वहाँ कुभोग भूमि में भी एक ही सनन है, वज्रशिव नारद सनन। ये भी ध्यान में रखना है। भोग भूमि में सर्वत्र एक ही सनन होता है, स्त्री पुरुष त्रिरंच त्रिरंचनी सबको पहला ही, ठीक है? इतना ध्यान में रखेंगे। कर्म भूमि में पुरुष को कितने? छह सनन। स्त्री को कितने? तीन। भोग भूमि में एक ही सनन सबको, कर्म भूमि में भोग, क्या पूछा? इधर पूछो, क्या पूछा? हाँ, एक ही सनन रहता है, बिल्कुल ठीक है। कर्म भूमि में त्रिरंचों को कितने सनन होते हैं? छह सनन। त्रिरंच को या त्रिरंचनी को भी? हाँ, त्रिरंचनी को लास्ट तीन, त्रिरंच को छह सभी। ये भी कॉमन कथन है, ये भी ध्यान में रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। नपुसक जीव को, नपुसक जीव को छह सनन है। हाँ, छह सनन है। राघव मत से नपुसक है क्या? नहीं, कर्म भूमि का है। कौन सा सनन है? पहला सनन। तो पहला है तो फिर दूसरा भी हो ही सकता है ऐसा, पर स्त्री पर्याय में छह सनन कर्म भूमि में नहीं है। त्रिरंचनी को और स्त्री पर्याय में स्त्री को अंतिम तीन, चौथा, पांचवा और छठा सनन है। हाँ, किसको? कर्म भूमि के जीव को। किसको? पहला, दूसरा, तीसरे काल में तो भोग भूमि होती है, एक ही सनन होता है, त्रिरंच त्रिरंचनी मनुष्य मनुष्यनी को एक ही सनन। यही कॉमन कथन है, ध्यान में रखते जाओ। किस काल में कहां पर कितने सनन किसको? देवों को कौन सा सनन होता है? ये भी कॉमन कथन है। हाँ, सनन नहीं होते, ये भी पता रहना चाहिए ना कि सनन नहीं होते। नारकियों को कौन सा सनन होता है? एकेंद्री जीवों को कौन सा सनन होता है? एकेंद्री जीवों को सनन कितने इंद्री के जीवों से शुरू होता है? दो इंद्री से शुरू होता है, दो इंद्री से शुरू होता है। कॉमन कथन है, ध्यान रखो। ये इतना भी मालूम नहीं रहे तो कैसे बढ़ेंगे? स्थावर कायिक जीव एकेंद्री हैं, जल पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन जीवों को सनन नहीं होता। किन किन को नहीं होता देखो, तीन लोक में किस किस को नहीं होता, देवों को, नारकियों को, पांच स्थावर का एक जीवों को, और किसको, और एक छूट रहे हैं, और किसको, तीन लोक में और कौन छूट रहे हैं, सिद्ध भगवान छूट रहे हैं, सिद्धों को सनन नहीं होता उनको कहां सनन है, अरहंतों को कौन सा सनन होता है बोलो, वज्र शुभ नारायण सनन, सिद्धों को कौन सा सनन होता है, सनन नहीं होता, ये कॉमन कथन है, इतना तो पता रहना चाहिए कि शुद्धों को सनन नहीं होता औदारिक शरीर भी हाँ सनन के बिना हो सकता है, एक इंद्रिय जीवों को बिल्कुल, भोगभूमि भरत ऐरावत क्षेत्र काल परिवर्तन इदे हाँ, अब दूसरा प्रश्न करे, कर्मभूमि का त्रिरंजनी जीव है स्त्री पर्याय में, उसको छठा सोनन है और गुणस्थान पांचवा है, तो कहां जा सकता है, हाँ? छठा बताया, छठा छठा गुणस्थान कौन सा, पांचवा, और सनन कौन सा, छठा सनन, कहां तक जा सकता है, एक से आठ तक ही जा सकेगा, देख करके नहीं बताना, कॉमन कथन अगर मालूम है तो विशेष कथन में विचार करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ गुणस्थान ही लगाया जाता है उसमें, बिना देखे बताना है। हाँ, शेष तीन काल में कर्म भूमि, पहले काल में मोक्ष नहीं जाएगा भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से। हाँ, और पूछें, वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, मान के चले सबका छठा ही सनन है और गुणस्थान पांचवा है, प्रतिमाधारी बन गए, मरण भी उसी में हुआ, तो हम कहां तक जा सकते हैं, कहां से कहां तक, पहले से आठवीं तक, अगर हम एक गुणस्थान नीचे उतर गए तो कहां तक जा सकते हैं, एक गुणस्थान नीचे उतर गए, पांचवे से एक गुणस्थान नीचे उतर गए, पहले स्वर्ग से आठवें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, और एक गुणस्थान नीचे उतर गए तो मरण नहीं, और एक गुणस्थान नीचे उतर गए तो मरण भी है, तो हम कहां तक जा सकते हैं, भवनत्रिक से आठवें तक जा सकते हैं, द्रव्य वृत्ति हो तो आठवें तक जा सकते हैं, और यदि हम पहले में आ गए, छठा सौनन है, पंचम काल है और अपन ही है, किसी अन्य जीव पर घटित नहीं किया जा रहा है और अपन ही हैं, मान के चले कि पहले गुणस्थान में आकर के मरण हुआ और द्रव्यव्रत भी छूट गए, द्रव्यव्रत भी छूट गए, भाव व्रत कब छूट गए थे, कहां से कहां आने पर भाव व्रत छूट गए थे? पांचवें से चौथे में आने पर भाव व्रत छूट गए थे। अब द्रव्य व्रत तो तब तक सुरक्षित थे, किंतु द्रव्य व्रतों को भी छोड़ दिया। तो कहां तक जा सकते हैं? बराबर बराबर, द्रव्य व्रत भी अगर छूट गए तो चारों गति में जाना संभव। किस गुणस्थान में मरण करने पर? पहले गुणस्थान में मरण करने पर और दूसरे गुणस्थान में मरण करने पर भी। ठीक, इसी प्रकार का एक पास का प्रश्न है, लगभग इसी के पास वाला। पंचम गुणस्थान में भी उतर गए, पंचम गुणस्थान से उतर गए, चौथे में आ गए और वहां रह करके द्रव्य व्रतों को भी समाप्त कर दिया, किंतु मरण हमारा चौथे में ही हुआ। हाँ, चौथे में ही मरण हुआ, द्रव्य व्रत भी छूट गए। पहले से आठवां, यहां पहले से क्यों लगाया गया? सम्यक दर्शन सद्भाव होने के कारण से, सम्यक दर्शन का सद्भाव है ये। सम्यक दर्शन जब तक है तब तक वह चारों गति में नहीं जा सकता, एक ही गति में जाएगा, देव गति में। उपचार महावृति एक आरिका है, उनका पंचम गुणस्थान में मरण हो रहा है। कौन सा मरण कर रहे हैं पांच मरण में से? बाल पंडित मरण। और दूसरा, दूसरी प्रतिमाधारी एक श्राविका है, और आरिका का और श्राविका का एक ही प्रकार का सवनन है। आरिका का भी चौथा सवनन है और श्राविका का भी चौथा सवनन। इन दोनों का मरण पंचम गुणस्थान में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो गया। हो गया तो ये कहां से कहां तक जा सकते हैं? एक दूसरी प्रतिमाधारी है और एक उपचार महावृति आरिका है। दोनों प्रतिमा, एक प्रतिमाधारी और एक आरिका, ये पंचम गुणस्थान में ही मरण कर रहे हैं, बाल पंडित मरण ही हो रहा है। कहां तक जा सकते हैं? पहले स्वर्ग से सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही। पहले स्वर्ग से सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं, चौथा सनन है। किंतु प्रश्न ये है, दोनों सोलहवें स्वर्ग तक कैसे चले गए? एक प्रतिमाधारी है और एक आरिका है। एक प्रतिमाधारी है और एक आरिका है, दोनों का एक समान स्थान नहीं है। गुणस्थान पांचवे में मरण कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया। वही प्रश्न क्या कहा था आपने कि पहले स्वर्ग से लेकर सोलहवें स्वर्ग तक जा सकती, दोनों प्रतिमाधारी भी और आरिका भी, पंचम गुणस्थान में मरण होने से सोलहवें स्वर्ग तक जा सकती है, किंतु ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। एक प्रतिमाधारी है और सोलह में कैसे गए? गुणस्थान में मरण हुआ, लेकिन अब प्रश्न ये है कि सोलहवें स्वर्ग में तो दोनों गए, तो दोनों में फर्क रहेगा कि नहीं? वहां किस में फर्क रहेगा? आयु में फर्क रहेगा और पद में फर्क रह सकता है, और किस में? लेशा में फर्क सकता है, कषाय में फर्क है, और बाह्य वैभव में फर्क हो सकता है। 19-20 का फर्क तो निकलेगा ही वहां, क्योंकि ये प्रतिमाधारी और वो आरिका, फर्क तो रहेगा। अब इनके कितने भव बच सकते हैं? कम से कम तीन, ज्यादा ज्यादा आठ। इन दोनों में भव के बचने में फर्क पड़ सकता है कि नहीं? प्रतिमाधारी को कितने पड़ सकते हैं? आठ, और आरिका को तीन। इससे उल्टा भी हो सकता है कि नहीं? प्रतिमाधारी को, हाँ बोलो बोलो, हो सकता है प्रतिमाधारी को तीन। हाँ, क्योंकि वर्तमान पुरुषार्थ काम करेगा, विशुद्धि अधिक बढ़ गई तो भाव घट सकते हैं। प्रतिमाधारी को तीन और आरिका को आठ भाव रह सकते हैं। मुख्य रूप से अपने परिणामों का खेल है, भावों का खेल है, विशुद्धि का खेल है। विशुद्धि हमेशा बनाए रखने वाले जल्दी जा सकते। इस बीच अपन को ये चर्चा भी करना चाहिए जो लेशा संबंधित विषय है, वो प्रकरण निकालेंगे इसी में। उसके बाद में एक चार्ट जोड़ दिया है लेशा वाले, उसके है ना। शल्यों के भेद, शल्यों के भेद, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग चार पेज नंबर 26 पर ये लिखा है। शल्यों के भेद है, वृत्ति शल्य से रहित होता है। निश्शल्यो वृत्ति, तत्वार सूत्र में आया है निश्शल्यो वृत्ति, वृत्ति को शल्य सहित नहीं रहना चाहिए। वृत्ति शल्य रहित होता है, ये कॉमन विषय है, समझ में आना चाहिए, ध्यान में भी रहना चाहिए। यदि वृत्ति बन गए तो क्या नहीं होना चाहिए अपने पास? शल्य नहीं होना चाहिए। शल्य किसे कहते हैं? शल्य किसे कहते हैं? शल्य का अर्थ होता है जो मन में कांटे की तरह चुभता रहता है, निरंतर विकल्प का कारण बनता है, निरंतर ध्यान जिसमें तल्लीन रहता है, उसका नाम है शल्य। शल्य यदि है तो भावव्रत टिक नहीं सकते, भावव्रत बच नहीं सकते। होते हैं ना भावव्रत, महावृत्ति को भी भावव्रत होते हैं और अनुवृत्ति को भी भावव्रत होते हैं। द्रव्य व्रतों को तो सुरक्षित रखना संभव है, परंतु शल्यों के सद्भाव में भावव्रतों को सुरक्षित रखना संभव नहीं है। इसलिए व्रत ग्रहण करने के बाद शल्य रहित ही होना चाहिए, ये उपदेश आगम में है। तो इन्हीं शल्यों को समझने के लिए यहां चार्ट दिया गया है। शल्य के मुख्य रूप से दो भेद बनाना चाहिए, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। द्रव्य शल्य किसको कहते हैं? यहां नीचे चौकट में लिखा है। भाव शल्य की उत्पत्ति में निमित्त भूत कर्म व नो कर्म को द्रव्य शल्य कहते हैं। भाव शल्य की उत्पत्ति में निमित्त होता है, ये कौन सा शल्य? द्रव्य शल्य। द्रव्य शल्य अगर ना हो तो भाव शल्य भी नहीं होगा। क्या होगा? द्रव्य व्रत ही नहीं हो तो जैसे भाव व्रत नहीं होते, द्रव्य व्रत ही ना हो तो भाव व्रत होते हैं क्या? नहीं होते। उसी प्रकार द्रव्य शल्य के बिना भाव शल्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसका अर्थ ये हो गया, भाव शल्य की उत्पत्ति में कारण कौन है? द्रव्य शल्य। लिख रहे हैं, लिखते हुए बैठेंगे तो हम जो बता रहे हैं वो समझ में आने वाला नहीं। द्रव्य शल्य के बिना भाव शल्य की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे द्रव्य व्रत के बिना भाव व्रतों की उत्पत्ति नहीं होती। दोनों व्रत व्रत ही है, व्रतों का विरोधक है शल्य, शल्य व्रतों के विरोधक है। द्रव्य शल्य के बिना भाव शल्य की उत्पत्ति नहीं होती, कैसे ये समझेंगे अपन? अब इधर चले, भाव शल्य दूसरा भेद है, इसका क्या अर्थ है? कर्म व नो कर्म के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न सम्यक्त्व व चारित्र विनाशक भाव, सम्यक्त्व विनाशक भाव और चारित्र विनाशक भाव किसके वजह से? कर्म व नो कर्म के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो भाव भावशैल्य कहलाते हैं। यानी भावशैल्य जब भी उत्पन्न होगा उसमें कर्म व नो कर्म निमित्त रहेगा। कर्म क्या है? कर्म क्या है? ज्ञानावरणादि आठ कर्म। लेकिन आठों कर्मों को यहां नहीं लेना है, क्योंकि शल्य की उत्पत्ति में कारणीभूत कर्म तो एक मोहनी कर्म ही है। मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, मोहनी कर्म के कारण से ही शल्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञानावरणी कर्म के कारण से शल्य की उत्पत्ति होना हो जाए तो फिर तो वृत्ति बनना संभव ही नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय 12वें गुणस्थान तक है। पर मोहनी कर्म के उदय में जीव को सशल्य बनना संभव है, और सशल्य बनने वाला जीव मोहनी कर्म के उदय में पहले से तीसरे गुणस्थान तक ही सशल्य बनता है, ऊपर के गुणस्थानों में शल्य सहित नहीं होता। कितने गुणस्थान तक शल्य की उत्पत्ति हो सकती है? 1-3। ऊपर सम्यक दृष्टि भी शल्य सहित नहीं और वृत्ति भी शल्य सहित नहीं। इसको और सूक्ष्म और भी विषय हैं, बाद में समझेंगे। सामान्य सामान्य बातों को याद में रखते जाओ। क्या बताया हमने? सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति या महावृत्ति ये सभी शल्य रहित होते हैं, इतना ध्यान में रखो। पहले विशेष चर्चा और बाद में आएगी। तो शल्य सहित जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, ये नियम हो गया। जो जो शल्य सहित होते हैं वे सम्यक दृष्टि भी नहीं होते और वृत्ति भी नहीं होती। द्रव्य वृत्ति हो सकते हैं लेकिन भाव वृत्ति नहीं होते, ठीक है? इतना ध्यान में रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। नहीं बताएंगे, उसका स्वरूप बता रहे हैं। शल्य के दो भेद हैं, वो आएगा आगे। शल्य के दो भेद हैं, द्रव्य शल्य भाव शल्य। भाव शल्य की उत्पत्ति में कारण द्रव्य शल्य है, और भाव शल्य की उत्पत्ति के लिए सहायक और हैं, कर्म व नो कर्म। कर्म कहने से यहाँ मोहनी कर्म, और नो कर्म कहने से वो हाश्य रति अरति है ना, नो कषाय, नो कर्म, नो कर्म भी कहते उसको वो। उनके उदय में जीव भाव शल्य वाला बन जाता है। अगर उनका उदय नहीं है तो शल्यवान भी नहीं बनेगा। कर्म व नो कर्म का उदय आवश्यक है। यहां पर भी द्रव्य शल्य में कहा कि भाव शल्य की उत्पत्ति में निमित्त भूत कर्म व नो कर्म। द्रव्य शल्य किसको कहेंगे? यहाँ का भाव शल्य की उत्पत्ति में निमित्त भूत कर्म व नो कर्म। और यहाँ क्या बताया, भाव शल्य में फर्क समझना है, द्रव्य शल्य में भाव शल्य में फर्क क्या है ये समझना है। कर्म व नो कर्म के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न सम्यक्त व चारित्र विनाशक भाव, सम्यक्त विनाशक भाव और चारित्र विनाशक भाव, इसको शल्य कहते हैं। शल्य हो तो ही वह सम्यक्त को और चारित्र को नष्ट करता है, और शल्य रहित भाव हो तो चारित्र और सम्यक्त का नाश नहीं होता। एक उदाहरण देते हैं, देखिए, कोई प्रथम गुणस्थान वर्ती जीव है, व्यक्ति है, वह देव की उपासना कर रहा है, कोई भी देव, अरहंत देव या रागी देव, देव की उपासना कर रहा है, और गुणस्थान कौन सा है उनका? पहला। तो शल्य सहित रहेगा क्या? शल्य रहित रहेगा? ये शल्य सहित ही रहेगा। क्यों? तो इसको आशा रहती है, इस व्यक्ति को आशा होती है, मुझे ये मिले, कामना रहती है, सांसारिक सुख की कामना रहती है। इस सांसारिक सुख की कामना कौन सी शल्य है? ये निदान शल्य है, निदान शल्य, निदान शल्य। मैं इस पूजा व्रत को निभाता हूं और मुझे ये मिले, कामना सहित हो गया ना, तो पूजा का फल मांग रहा है, तो सशल्य हो गया ये। तो शल्यवान जीव कभी भी सुखी नहीं रहता, आया ना, क्यों? कांटे की तरह वह सदा पीड़ा देता है, शांत बैठने नहीं देता। कामना सहित होकर के देवोपासना कर रहा है, वो भले ही अरहंत की भी क्यों न उपासना कर रहा हो और रागी की भी उपासना क्यों न कर रहा हो, अरहंत से भी मांगता है, रागी से भी मांगता है, तो भी शल्यवान है वो। कोई ऐसा भी हो सकता है, रागी को तो नहीं, रागी से तो नहीं मांग रहा है, जब भी देखते हैं अरहंत से ही मांगता है और अरहंत का ही भक्त है, तो भी कामना करता है। तो कामना करने मात्र से सशल्य होता है, कामना करने वाला जीव ही शल्यवान जीव, क्योंकि पूजा भक्ति करने के बाद पूजा का फल मांग रहा है कि अरहंत भगवान इस पूजा का फल मुझे ये मिले, तो शल्यवान है। शल्यवान सुखी रहने देता है क्या? अगर फल नहीं मिला तो भी चुपता है, अरहंत ने कुछ नहीं दिया, और फिर अरहंत को छोड़कर उधर भागता है, फिर अज्ञानी है ना, उसको हे उपादे का ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, इधर नहीं मिलता है तो उधर, उधर नहीं मिलता है तो इधर, भटकता रहता है। शल्यवान जीव कभी सुखी होता नहीं है, क्यों नहीं होता? कि वह जिसको मांग चुका है उसमें निरंतर उसकी बुद्धि, उसका मन निरंतर लगा हुआ रहता है और पीड़ित रहता है, नहीं मिला, नहीं मिला, मिलेगा, जब जब तक नहीं मिलता है तब तक मिलने की आशा, ये भी चुभन है। मिलने के बाद अच्छा मिला तो खुशी, तो भी शल्यवान है, क्योंकि जब तक नहीं मिला था तब तक मिलेगा क्या नहीं, मिलेगा क्या नहीं, ये चुभ रहा था। मिल गया, तो किससे मिला? पुण्य कर्म के उदय से मिला, पर समझता क्या है? ये इन देवताओं ने दे दिया, देवता नहीं देता, पुण्य के उदय से मिलता है। व्रतों को किया, पुण्य बांधा, पुण्य के उदय में मिला, पुण्य के उदय में मिला, देव ने नहीं दिया, ये शल्य कहलाती है। भ्रम होता है, पुण्य से मिला लेकिन देव ने दिया, ऐसा भ्रम होता है। मतलब देव देता ही नहीं, लेकिन फिर भी देव देता है, ये जो भ्रम है ये भी शल्य है। ये कौन सी शल्य? माया शल्य। जिससे मिला वो तो पता नहीं है, और जिससे नहीं मिला उसको मिला कह रहे हैं, तो माया शल्य। माया कर्म के उदय में जीव को माया भाव ही होते हैं। अनंत अनुबंधी कषाय के उदय में, अनंत अनुबंधी माया कषाय के उदय में जीव को सत्य का बोध नहीं होता। मिथ्यात्व शल्य, उसके तीन भेद हैं, वो उसको बता के भेद करेंगे। माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, इसको मिथ्या भी कह सकते हैं और माया भी कह सकते हैं। जहां एक शल्य होती है वहां तीनों शल्य होते ही हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। किससे मिला? क्या कहा उनने? हाँ, देवता से मिला, देवता से मिला, ये शल्य हो गया, ये मिथ्या शल्य हो गया, क्योंकि अज्ञान के कारण से निर्णय नहीं रहा। मिथ्यात्व के उदय में जो अतत्व श्रद्धा होती है, अतत्व श्रद्धा होती है, अतत्व श्रद्धा ही है। वास्तव में जिससे मिला वो मालूम नहीं है, और जिससे नहीं मिला उसको मान रहा है, तो अतत्व श्रद्धा तो हो गई। ये मिथ्या शल्य है, ये मिथ्या शल्य। निदान शल्य क्या कहलाया? अपेक्षा जो की वो निदान शल्य, अपेक्षा जो हो गई वो निदान शल्य। माया शल्य क्या हुई? माया शल्य यही है कि जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसे मांगने जा रहा हूं। जो वस्तु मेरी नहीं है, ये भौतिक वस्तु हमारी है क्या? नहीं है। और इसको अपना मानना, ये क्या मिथ्यात्व का उदय नहीं? पर वस्तुओं को अपना मानना मान्यता में मिथ्यापन हो। मालूम तो है नहीं कि ये मेरे नहीं है, ये मालूम तो है नहीं, और इसी को अपना मान बैठे हैं। यही असली सुख के साधन है, और यही मेरे हैं, यही मैं हूं। वस्तु सो मैं सो वस्तु का ये जो धारणा है, ये क्या मायाशल्य नहीं? अनंत अनुबंधी माया का उदय आपको ठीक श्रद्धान करने नहीं देता, ठीक वस्तु का निर्णय होने नहीं देता। पर वस्तु को अपना मानो, उसमें राग बुद्धि प्राप्त हो जाओ, और राग बुद्धि वाला हो गया तो अपने को भूल गया, पर को अपना मान बैठा, ये माया ही है। माया कशा है? मायाशल्य देखो, मिथ्याशल्य होने के बाद मायाशल्य तो है ही। मिथ्या तो कर्म के उदय से मिथ्याशल्य हुआ, और माया कषाय के उदय से, अनंत अनुबंधी माया कषाय के उदय से मायाशल्य कहलाई। तो एक दूसरे से वो जुड़े हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उदय और तज्जन्य परिणाम आपस में संबंधित है। तो निदान हो गया वहां, हाँ, मिथ्या माया शल्य में यही होता है, प्रथम गुणस्थान को प्राप्त करता है निदान शल्य के माध्यम से। मान के चले कोई सम्यक दृष्टि जीव है, जब तक निदान नहीं करेगा तब तक सम्यक तो से च्युत नहीं होगा, कामना करेगा तो सम्यक तो से च्युत होगा, कामना करके नीचे आया, पहले गुणस्थान में आया। प्रश्न उठता है कि गुणस्थान से गिरने का कारण क्या है? निदान, मांगा, मांगने के भाव आ गए, तो सम्यक दृष्टि ही तो मांगा कैसे? जब अनंत अणुबंदी का उदय हुआ तभी मांगा, आप प्रत्याख्याना वर्णी कषाय के उदय में मांग नहीं सकता हो। सम्यक्तो का अस्तित्व जब तक है तब तक मांग नहीं सकता, पर सम्यक दर्शन जब कमजोर पड़ जाता है, सम्यक दर्शन के भीतर जो हम पुरुषार्थ कर रहे थे मांगना नहीं, वो पुरुषार्थ जब कम पड़ता है तब मांगने के भाव आ भी सकते हैं। सम्यक दर्शन कमजोर हो तो ही मांगने के भाव आ सकते हैं। सम्यक दर्शन दृढ़ है तो मांग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पश्चात भी जीव गिरता है और निदान शल्य के कारण से गिरता है ये कहेंगे तो ऐसा माहौल बनता है तभी गिरता है वो, तो परिणामों में उथल फुथल हो जाता है, सम्यक्त्व के परिणाम मिथ्यात्व की ओर ढलने लगते हैं और भावों में परिणामों में यह आता है कि मांगना चाहिए, मांगने से ही कुछ बनने वाला है काम, ऐसे भाव हो जाते हैं। ये निदान बंद के परिणाम कहाँ तक है एक बात और भी ध्यान में रखना है। निदान शैली, निदान बंध और निदान आर्थ, ये सब अलग अलग है। निदान शल्य तो निदान शल्य है जो पहले गुणस्थान में होता है, शल्य की उत्पत्ति की जो भूमिका होती है वो निदान आर्थ ध्यान कहलाता है। निदान आर्थ ध्यान को निदान शल्य नहीं कहा, आर्थ ध्यान है और इसका अस्तित्व पांचवें गुणस्थान तक है। किसका अस्तित्व? निदान आर्त ध्यान का अस्तित्व पांचवें गुणस्थान तक है, पर निदान शल्य का अस्तित्व पहले गुणस्थान में है। कोई भी जीव एकाएकी पहले गुणस्थान में नहीं आता, उससे पूर्व भूमिका बनती है। शल्य की पूर्व भूमिका बनती है तभी शल्यवान बनता है। कैसी भूमिका बनती होगी? पहला आर्त ध्यान करता है, निदान आर्त ध्यान करता है, यानी परिणाम आर्त ध्यान की ओर पहले बढ़ते हैं। पहली पीड़ा होती है कि मुझे ये कष्ट आया है क्या करूं, ये निदान आर्त ध्यान है। इसके निवारण का उपाय भी मालूम है, इस पीड़ा को दूर करने का उपाय क्या है, इस संकट से मुक्त होने का उपाय क्या है, उसको मालूम है। तो मालूम है तो उसका विचार भी आएगा। ये सभी बोल रहे हैं इस देवता से मांगो ये ठीक हो जाएगा, या वहां पर वो जाकर के अर्चना करो सब ठीक हो जाएगा, तो ये नौ कर्म है। लोग जो हैं, लोग ये नौ कर्म है, परिवार के लोग, गली के लोग और कोई भी हो, वे सभी नौ कर्म कारण बनते हैं। ये द्रव्य शल्य की कोटि में, ये द्रव्य शल्य के निमित्त लोग बताने लगे कि ये संकट से मुक्त हो जाओगे, इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे, थोड़ा सा काम कर लो, जाओ देवता के पास, मन्नत करके आओ, ठीक हो जाओगे। वो गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं? लेकिन जब संकट में जीव रहता है तब हो सकता है इन लोगों में कहने में कोई दम हो, ये भी हो सकता है, ये कहकर ऐसे संशयात्मक भाव उत्पन्न हो गए। तो निदान आर्त ध्यान के लिए रास्ता निकलता है कि नहीं? आर्त ध्यान, निदान आर्त ध्यान, हाँ मुझे ऐसा भी रास्ता है ये बता रहे हैं, तो ऐसा भी जा सकता हूं, ये आ गया। तो सम्यक दर्शन में ढीलापन आ गया कि नहीं? सम्यक दर्शन ढीला पड़ गया। अब वह क्या करता है, लोगों का सुन करके चलो चलते एक दिन करके देखते, एक दिन करके देखते, आ गया ढीलापन, आ गया। करने के भाव, निदान बंद करने के भाव तो आ गए, भाव आ गए, एकाएकी गुणस्थान नहीं करता। पहला अंतर मुहूर्त तक तो आर्त ध्यान, निदान आर्त ध्यान होता ही है। निदान आर्त ध्यान जब प्रौढ़ बनता है, निदान आर्त ध्यान के माध्यम से जब सम्यक दर्शन में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार तक जब पहुंच जाता है, तब तब तो सम्यक दर्शन बचा रहता है। वो बार बार अनाचार करने लग जाए तो फिर निदान शल्य में शामिल हो जाता है। निदान आर्त ध्यान करते करते ही निदान शल्य में शामिल होगा, ठीक है? शल्य की शल्य भूमिका है, निदान शल्य शल्य निदान आर्त ध्यान भूमिका है, शल्य की भूमिका है। एकाएकी शल्यवान नहीं बनता, पहला आर्त ध्यान करता है, लोगों को सुन लेता है, फिर भावों में ले लेता है। देखो सुनना, भावों में लेना, अतिक्रम व्यतिक्रम हो रहा है, यह आर्त ध्यान की ओर ही है। संकट को मुक्त, संकट से मुक्त होने के उपाय हैं ये। हाँ मनन चल रहा है, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार फिर अनाचार। अब सब तैयारी करके चला गया, अनाचार हो गया, अब शल्यवान बन गया। अंतर मुहूर्त होता है कोई भी ध्यान, आर्त ध्यान, निदान शल्य आर्त ध्यान भी, निदान आर्त ध्यान भी अंतर मुहूर्त तक होता है। अंतर मुहूर्त के अंदर भूमिका बनती है और फिर निर्णय ले लेता है, निर्णय लेने के बाद अनाचार बनता है, अनाचार बनने के बाद शल्यवान हो जाता है। एक मिनट शंका, एक मिनट ठहरो, इसको पूर्ण करते। निदान आर्त और निदान शल्य कैसे बनता है ये तो समझ में आ गया, अब निदान बंद क्या है? निदान बंद का अर्थ होता है व्यक्ति जो चाहता है उसको संकल्प के साथ बंद, ने संकल्प करना, संकल्प के साथ पाने के लिए जा रहा हो तो उसको निदान बंद कहते हैं। संकल्प किया तो निदान बंद हो गया, संकल्प जब तक नहीं करता तब तक निदान आर्त ध्यान में चलता रहता है, और जब उसके भावों में प्रौढ़ता आती है शल्य की ओर जाने से पहले संकल्प कर लेता है, मुझे ऐसा ही करना है, निर्णय ले लिया, मुझे इस पूजा का इस व्रत का फल पाना ही है, इसका फल ये मिले, ये बंद हो गया, संकल्प करना बंद है। बंद बाद में होता है, पहला आर्त ध्यान होता है, निदान आर्त ध्यान, फिर संकल्प करता है, संकल्प के साथ ही शल्य में धुमक जाता है। इसलिए ये तीनों में जो अंतर है वो समझ में आ गया, निदान शल्य, निदान बंद और निदान आर्त, पहला निदान आर्त, निदान बंध और निदान शल्य, निदान शल्य, इन सबको समझेंगे। हाँ पूछो। निदान बंद नहीं किया उनने, मन परिज्ञानी थे वो। कथा नहीं, नहीं गलत है, कथा कन्फ्यूजन है, फिर से पढ़ो। ये कन्फ्यूज्ड है, नहीं गलत है, कहाँ पढ़ा? वो अलग हो सकते हैं, ये अलग है। वो मुनि अलग हैं जिन पर उपसर्ग किया था, ये अलग है। बंद से क्या लेन देना, सिर्फ अपने को स्वरूप समझना है। कर्म कौन सा बंद रहा है, कम ज्यादा बंद रहा है, क्या लेन देना उससे? बनता है, कम भी बनता है, ज्यादा भी बनता है। निदान बंद करने के बाद तो निदान शल्य हो ही जाता है। संकल्प किया तो शल्य में रूपांतर, कौन सा शल्य किया? निदान शल्य है वो, उसी को निदान शल्य कहते हैं। संकल्प के पश्चात जो भाव उत्पन्न हो गए उसी का नाम निदान शल्य। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, समय हो गया। अच्छा
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरुमा अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।